आजकल हम पढ़ रहे हैं इबादात को ना, तो इबादात की रूह पढ़ने से कुछ समझ आई बात ना? बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि फीकी चाय या टेस्ट वाली चाय, या चाय के साथ बिस्किट, चाय के साथ समोसे, हर चीज़ का लुत्फ बढ़ता जाता है ना। तो हम फीकी चाय पीते हैं, पढ़ लेते हैं, फ़र्ज़ तो पूरा हो ही जाता है। अल्लाह ताला हमारी औकात देखते हुए हमें कम अज़ कम एग्ज़ाम तो कर ही देंगे ना, कि फरिश्तों इनको बेनमाजी ना लिखना। लेकिन वो कुर्ब और वो लज्जत से हम महरूम है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इबादत जो है ना, ये फ़र्ज़ है, हाय मुश्किल, नमाज़ पढ़ो फिर नमाज़ पढ़ो। आज एक और चीज़ अपने ऊपर लें, इसको लज्जत बनाएं। अकीमिस सलात अली जिक्री, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि तुम मेरी याद के लिए नमाज़ पढ़ा करो। अब किसी को याद करें, आप बैठे हैं, आप कहते हैं मैंने आपको याद किया, तो लज्जत आती है ना, मज़ा आता है। जिससे मोहब्बत हो उसकी बातें, उसका जिक्र बंदे को सुकून देता है। तो आप देखेंगे कि इस तरह हमारी नमाजें जिंदा होंगी। बल्कि एक जुमला बोल देती हूँ कि अपनी नमाजों के पीछे पड़ जाएं। बस अब हमने ये इबादत का टॉपिक पूरा होने से पहले अपनी नमाजों को ठीक करना है, ठीक है? फिर क्योंकि नमाज तो दिन में 5 बार है ना, रमज़ान तो एक ही दफ़ा आएगा, और भी चीज़ें हैं, लेकिन नमाज ठीक हुई तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो आज हम टॉपिक देखेंगे नमाज कायम करने से क्या मुराद है। आप देखते हैं कि कुरान पाक में हमेशा अकीम उस्सलात के लफ्ज़ आते हैं, तो इंशाल्लाह पेज 55 से हम कंटिन्यू करेंगे। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु कौली, रब्बि यस्सिर वला तुय्यसिर व तम्मिम बिल खैर। इस्लाम की 4 बुनियादें, इसमें से हम पेज 55 से इबादात के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और वो टॉपिक क्या है कि नमाज कायम करने से क्या मुराद है। क्या हम अमूमन ये चीज़ देखते भी हैं और सुनते भी हैं कि नमाज कायम करो, अकीम उस्सलात, और इससे कायम करने का फ़र्क कैसे पता चलता है? और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, नमाज पढ़ो कह लो, नमाज कायम करो कह लो, नमाज को ताज़ा करो। लेकिन आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जो जो अल्फाज इस्तेमाल किए ना, उसमें हिकमत है। तो आइए ज़रा इसको थोड़ा सा पढ़ के फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। फरमाया अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। मालूम हुआ कि नमाज को कायम करना ऐसा निज़ाम कायम करना है, आप इसको प्लीज़ हाईलाइट कीजिएगा, नमाज को कायम करना ऐसा निज़ाम कायम करना है जिसमें कोई नमाज पढ़े बगैर ना रह सके। हाईलाइट करें ज़रा, ऐसा जिसमें कोई नमाज पढ़े बगैर ना रह सके। इमेजिन करें ज़रा, कोई ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर लोग नमाज के बगैर जी ना सकें। आप इसको ज़रा अपने लिहाज से कहिए कि कोई ऑक्सीजन के बगैर जी सकता है, कोई पानी के बगैर जी सकता है? आप किसी मुल्क का तसव्वुर करें और वहाँ सड़कें ना हों, रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। आप इस तरह की चीज़ों को नोट करते जाइए कि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में इस तरह की खैर ले आए कि जिसके बगैर आपका गुजारा ही ना हो, आप देखेंगे कि वो चीज़ कायम हो जाती है। लोगों का एक मिजाज बन जाए कि जूं ही नमाज का वक्त हो, कोई और काम इनके ध्यान में ना रहे। चलिए खुद से सोचते हैं, कोई और काम ही नहीं कर पा रहे। पीछे हमने एक जुमला पढ़ा था ना, बड़ा अच्छा लगा था, कि ध्यान अल्लाह की तरफ रहे, धुन और ध्यान। मैं कहती हूँ कि मस्त मलंग बन जाए। लोग तो इन लफ्ज़ों को पता नहीं किधर ले जाते हैं ना। मस्त बंदा वो होता है जो हर वक्त अपने रब के कामों में लगा हुआ है, उसको फिक्र ही नहीं इस बात की कि दूसरे मुझे क्या कह रहे हैं, मेरे बारे में क्या हो रहा है, मैं कैसी बात कर रहा हूँ, मैं किस तरह से इन चीज़ों को लेकर चलूंगा। क्यों? इसलिए कि उसको फिक्र इसकी है। आप इसको एक छोटी सी मिसाल से समझें, शायद आपको इससे मैं बात अच्छी तरह समझा सकूं। आप देखिए कि दुनियावी मोहब्बत होती है ना लोगों को, कभी जवानी में आपने सुना होगा, लड़का है जी आजकल फलां के चक्करों में है, उसको फलां की फिक्र है, उसकी है, तो बाद उनको बिल्कुल इस बात की कोई परवाह ही नहीं रहती कि हमारे माँ बाप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम उनके लिए इज्जत का, खुशी का जरिया कि नहीं। वजह क्या है? क्योंकि वो एक मोहब्बत में गुम है। आप और मैं इस मोहब्बत को हकीकी मोहब्बत में बदलें। मैं हर वक्त अपने रब के ख्यालात में जीती हूँ, मुझे इस बात की कोई परवाह ही नहीं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। आप देखेंगे इससे आपका हाल हुलिया ठीक हो जाएगा। आप लोगों की नज़रों को अपने चेहरे पे, अपने जिस्म पे नहीं देखेंगे। लोग गलत काम कर रहे हैं, आप कहते हैं सॉरी आई हैव टू गो, मेरा अल्लाह मुझे कह रहा है कि तुम इधर नहीं बैठना। ज़र्रा एक 0.% भी आपके दिल में मलाल नहीं होगा कि मैंने किया तो क्या किया। शर्त एक है कि ध्यान उसका लग जाए। ये जो हम घंटों के एतबार से गुनाह की जगहों पे बैठ के आ जाते हैं ना, उस वक्त अल्लाह से ध्यान हटा होता है। मैं कहती हूँ कि ये एक दीवानगी है, ये एक मस्ती है, ये एक मौज है, ये मज़ा है। आपको गम भी नहीं रहता। कभी आपने देखा है दीवाने मजनू मैयत सामने पड़ी होती, हंस रहे होते हैं, राल निकल रही है, स्माइल दे रहे हैं। बच्चों को भी देख लें, सारे रो रहे हैं, वो हंस रहे होते हैं, वो खेल रहे होते हैं, ये मस्ती होती है। देखिए जिसको आप कहते हैं फना फिल्ला नहीं होना, नाउज़ुबिल्ला, इससे लोगों ने फिर गलत तावीलात बनाई। क्या कहते हैं कि जी हलूल हो गया, मैं अल्लाह के अंदर चली गई। और आप थोड़ा सा कभी किसी वक्त तसव्वुफ को पढ़ के देखें, जो असल चीज़ है वो यही है कि ध्यान अल्लाह की तरफ हो। तरीके ठीक नहीं है, वही बात है, शरीयत की पटरी से उतरे हुए। अगर उसके ऊपर रह कर आप तसव्वुफ में, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शर्त यह कि सुन्नतें भी जिंदगी में हों, फराइज भी हों, हर चीज को उसकी जगह पे रख के करें अल्लाह से प्यार। यानी तसव्वुफ का एक आखिरी नुक्ता क्या होता है कि अल्लाह से प्यार करो। बहुत अच्छी बात है। मैं देखती हूँ कि आज हमारे मुल्कों में या हम मुसलमानों में काम अच्छे हैं, लेकिन सोच बदल गई। तबलीग बहुत अच्छा काम है, जिंदगी का खुलासा ही तबलीग है। इस्लाम हमें सिखाता ही है कि वानजिर, लेकिन अब सिर्फ तबलीग के अंदर पढ़कर कुछ खास रिचुअल्स को लेकर खुद को तबलीगी कहला लेना, ये ठीक नहीं है। जिंदगी का बैलेंस कायम रहता है जब हम सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करते हैं। तो क्या है अकीमुस्सलात, फिर क्या हुआ? नंबर एक, ऐसा निज़ाम कायम हो जाए कि कोई शख्स नमाज पढ़े बगैर रह ही ना सके। पीछे याद होगा वाकई इसी बुक में ही पढ़ा था ना, सूटकेस बेचने वाले ने बिका हुआ सूटकेस इनको दिया नहीं, पैसे नहीं पकड़े क्योंकि अजान हो गई है। आप इसको इस तरह समझे, मेरे जहन में एक मिसाल आ रही है टेलीफोन बेल की। आप फोन कहीं रख के काम में लग गए और फोन बेल हो जाए, बेचैनी होती। चाहे आना किसके, कोई हमें सदर ओबामा का तो आज तक फोन नहीं आया, ना मलका विक्टोरिया ने किया। करते तो हम जैसे ही हैं जिनको हम सुबह शाम सुनते हैं, लेकिन बेचैनी कैसे लग जाती है, हाथ पांव पड़ जाते हैं लोगों को। भाई सबर सबर, और नाम भी आ रहा है, कॉलर आईडी भी है, आप बाद में मिला भी लेंगे। को हर वक्त तो फोन हाथ में नहीं लेता, लेकिन फौरन तवज्जो होती। और दिन में क्या था, किसका होगा? और आप यहां बैठे हैं और अगर आपने फोन साइलेंट में किया है या उसको वाइब्रेशन पे किया ना, कोई एक उधर क्लिक आएगा ना, आपको फील हो गया, तो आप आंखें चुरा के देख ही लेंगे मैसेज आया किसका है कि नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि ध्यान पड़ जाता है। बस ऐसे ही हर वक्त हमारा ध्यान अल्लाह में पड़ जाए। लोगों का मिजाज हो कि जूं ही नमाज का वक्त हो कोई और काम उनके ध्यान में ना रहे, कोई और सोच ना रहे, सिर्फ यही ध्यान हो कि आध घंटे के बाद नमाज का वक्त होने वाला है, तैयार होकर बैठ जाए कि अजान में चंद मिनट रह गए हैं, अभी वुजू नहीं किया। तैयारियां होती है ना बेचैनियां, अब देखिए हमने कहीं जाना होता है तो बेचैनियां होती हैं ना, हमें बस वही महसूस कर, हाय कब जाएंगे, हाय कितनी देर रह गई, अच्छा कपड़े निकाले, अच्छा शावर ले ले, अच्छा वुजू कर ले। इस तरह नमाज से पहले ही बेचैनी शुरू हो जाए। किसी महबूब से मुलाकात यानी अपॉइंटमेंट हो तो हम पहले से सोचते हैं और इंतजार करते हैं कि विसाल की घड़ियां आ रही हैं। विसाल कहते हैं मुलाकात, वसल से। बिल्कुल यही कैफियत हो। फरमाया मोमिन वो है जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता है, जिसे एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार रहता है। जब ये कैफियत होती है तो फरमाया इन्नस सलात तनहा अनिल फख्शाई वल मुनकर, नमाज हर बेहयाई और हर मुनकर से रोक देती है। सूरत अनकबूत 45 और ये 21वें पारे की पहली आयत भी है। इसी को इमादुद्दीन यानी दीन का सतून करार दिया है, और दीन की इमारत जिसकी चार मंजिलें बताई हैं, ये चारों इसके उमूद यानी सतून है। अब देखिए थोड़ा सा हम इस पर भी बात करते हैं, नमाज बेहयाई से कैसे रोकती है। आज हमारे कल्चर में काफ़ी लोग इस तरह के हैं कि उनके हाल हुलिये से, तौर तरीके से, उनकी मसरूफिया से ये लगता नहीं है कि ये नमाजी हैं, लेकिन वो कहते हैं हमने कभी नमाज नहीं छोड़ी। जैसे एक सिस्टर की मुझे अदा याद आ जाती है कि खुद उनको लग ही रहा होगा ना कि मेरा हाल हुलिया ठीक नहीं है जिस रंग में हो, लेकिन खुद ही कहते वैसे नमाजें में पांचों पढ़ती। तो अगर आप ज़ेरे लब कहते हैं कि नज़र नहीं आ रहा या महसूस नहीं होता, तो वो कहेंगी क्या मतलब है, नमाज पढ़ने से क्या महसूस होना चाहिए? नमाज बुराई से रोकेगी। मान लीजिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, आप देखिए एक लड़का है पक्का नमाजी, कोई लड़की कॉलेज स्कूल की उसके साथ लग गई, उसके पीछे फिरती है, उससे बात करती है, बढ़ाती है, बेतकल्लुफ होना चाहती है। अब ये जान छुड़ा रहा है या उससे इसको भी कुछ इन्वॉल्वमेंट फील हो गई, इतने में घड़ी देख के कहता है हैव टू गो। क्यों? जोहर का वक्त है, मुझे नमाज के लिए जाना। वो कहती क्या मतलब? कहती नहीं मैं अभी आ जाऊंगा, आधे घंटे 15 मिनट में आता हूँ, आधे घंटे में। वो वहां से निकला, उसको छोड़कर गया, मस्जिद गया, नमाज पढ़ी, पढ़ पढ़ा के आधे घंटे में वापस आया। अभी वो थोड़ी सी फिर बेतकल्लुफ हुई, और दिन भी सर्दियों के, एक नमाज से दूसरी और दूसरी से तीसरी। अभी वो थोड़ी सी मोहब्बत की बात करती है, कहता है आई हैव टू गो। क्यों? नमाज का वक्त हो गया। अब वो दोबारा कहेगी क्या मतलब है? अब मुझे बताइए, जब आधा घंटा लगाकर असर पढ़ के आएगा, और तीसरी दफा जब मगरिब के लिए वो आधे घंटे में फिर निकलने लगा, तो वो लड़की उसकी जान नहीं छोड़ देगी? कहेगी तुम पढ़ो नमाजें, मुझे तुम नहीं चाहिए। इन्नस सलात तनहा अनिल फख्शाई मनकर। ये कभी हो नहीं सकता कि बंदा नमाजी हो दिल से। दिन में 5 बार आप अल्लाह को कहते हैं, अल्लाह तआला इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मैं सीधा रास्ता मांगती हूँ, और नमाज पढ़ने के बाद आप उससे उलट अमल कर दें। ये थोड़ा सा सीधा रास्ता मांगने को भी देख लीजिए, ये भी रस्मी कलामी मांगते हैं। अल्लाह सुबहाना ताला दुनिया में जितनी भी हम दुआएं मांगते हैं ना, बच्चे, औलाद, घर, खुशी, जॉब, जो दुनिया की चीज़ें हैं, अल्लाह ताला चाहे तो हमें दुनिया में दे, चाहे तो इसके बदले में हमें किसी तकलीफ से रोक ले, और चाहे तो जन्नत में जाके दे दे, आखरत में फ़ायदा दे। ये आप सबको पता है ना, हर दुआ के साथ इन तीन में से एक काम होते हैं। वजह क्या है कि अल्लाह ताला को पता है यहाँ नहीं तो वहाँ। एक दुआ ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में कबूल होगी। क्यों? मरने के बाद हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग दुआ, सबसे कीमती दुआ, और अल्लाह ने उसको नमाज का हिस्सा बना दिया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत की दुआ जब आप दिल की गहराई से मांगेंगे, वो ज़रूर ज़रूर और ज़रूर कबूल होगी। क्यों? अल्लाह इसको पीछे डाल ही नहीं सकते। क्यों? कि मरने के बाद आपको हिदायत की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ से फिर थोड़ी सी साइड की बात, के लोग मरने वालों पे फातिहा पढ़ते हैं। चंद दिन पहले किसी ने पूछा, अच्छा कब्रिस्तान जाएं तो फिर क्या करें? बस वो कोई कहता फातिहा पढ़कर आ जाएं तो क्या, मतलब उनका एक इशू था कि क्या कब्रिस्तान जा सकते हैं कि नहीं। तो मैंने कहा जा सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन वहां जाके बैन करना, रोना धोना और दूसरे मामले ना करें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं कभी जाऊं ना, तो मैं जो वहां है उनके लिए नहीं जाऊंगी, मैं अपने लिए जाऊंगी, कि मैं अपने आप को तसव्वुर में वहां देखूंगी। तो मैंने कहा रहेगी बात सूरह फातिहा जाके वहां पढ़नी, मुझे तो कोई हदीस नहीं मिली। और सीधी सी बात है, लॉजिकल बात है, और वो क्या है कि सूरह फातिहा की जरूरत तो जिंदों के, पूरी सूरह फातिहा में कहीं मरने वाले या किसी इंसान के लिए कोई और दुआ है सिवाय इहदिनस सिरातल मुस्तकीम? सारी जिंदगी हमें हिदायत की जरूरत होती है, और हम ये किताब बंद कर देते हैं। बंद किताबी इज्जत कर रहे हैं ना हम इसकी। तो मरते ही हम कहते हैं अब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आप सोचिए ना, एक मुर्दा पड़ा हुआ है सामने, आप उसके लिए दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान रहीम, मालिक की योम दिन, बदले का दिन का मालिक, या का नाबुदू, अपने ऊपर ले रहे हैं, तो हम आपकी इबादत करते हैं, या का नस्ताइन, हम आपके बंदे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात कॉमन है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी रास्ता दिखा। सिरातल लजीना अनमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम किया। सिरातल लजीना अनमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम, उनका नहीं जिन पे गज़ब किया, वलद्दालीन, और भटके हुए। आप एक एक लफ्ज़ को उर्दू में, पंजाबी में लिख के देख लें, मुर्दे को क्या दिया आपने? एक दफ़ा आपने उसमें नहीं कहा, एक दफ़ा भी आपने मरने वाले के लिए ये तक नहीं कहा कि अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू। देख लीजिए पूरी दुआ फिर पढ़ लीजिए, आपने एक दफा नहीं कहा अल्लाह मरहम हो, अल्लाह इस पर रहम कर। आपने एक दफा नहीं कहा कि अल्लाह इसकी कब्र को खोल दे, अल्लाह इसको इसके घर वालों से अच्छा घर वाले दे। और इसके बरक्स इतनी खूबसूरत दुआ अल्लाह के नबी ने सिखाई कि जब कोई मर जाए, अल्लाह मग़फिर लहू व रहम हु वाफ़ी वाफ़ुअन्हु वक्रिम नुज़ुलहू व वस्से मुदखलहू वब्दिल खुदारन खैरम मिन दारहू व अहलन खैरम मिन अखलहू व ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजहू वदखिलहुल जन्ना वाइज़हु मिन अज़ाबिन नार। जिनको समझ आई है उनको पता है सारा कुछ ही मांग लिया आपने, ये कोई नहीं पढ़ते। अल्लाह मग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व ज़करिना व उनसाना, ये नहीं मांगा। तो याद रखिए, और कितने लाखों मुसलमान हैं जो आंखें बंद करके मरने वालों पे फातिहा पढ़ते हैं बगैर ये सोचे कि इसके बाद होगा क्या। जी आप बेहतरीन दुआएं देखिए, अपने लिए पढ़ना है ना किसी के मरने पे, तो पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हदीस में आता है कि जब कोई मर जाए ना तो आपको सब्र नहीं आ रहा, दुख है, तकलीफ है, सदमा है, ज़हनी तौर पे कबूल नहीं कर रहे, तो आप ये दुआ पढ़ें, आपको सुकून मिलेगा। हत्ता कि अगर कई साल हो गए हैं, जब कभी पुरानी बात भी तो याद आ ही जाती है ना, कभी कभी होता है ना किसी खास मौके पे इंसान को याद आ ही जाता है, हाँ, उस वक्त भी आप ये पढ़ें तो उतना ही अजर है जितना कि उस वक्त आपको फ़ायदा होना था, जितना कि कोई फौत हुआ था तो आपने पढ़ा था। बिल्कुल इसी तरह से ये आपके फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन अगर मरने वाले के लिए पढ़ना है, आसन दर्जे की चीज़ है, उसकी बख्शिश की दुआ मांगे। मरने वाले को आप सिर्फ एक दुआ दे सकते हैं कि अल्लाह इसको बख्श दे, उसी में फिर वो सब कुछ आएगा ना, अल्लाह मग़फिर लहा वरहमहा। तो बहरहाल सारी बात का खुलासा क्या है कि ज़िंदगी ज़िंदगी में मुझे और आपको हिदायत की ज़रूरत है, और नमाज में ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम डाल दी। अब आप और मैं दिन में 17 रकतों में 17 बार कहते हैं अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, तो क्या नमाज बेहयाई और मुनकर से नहीं रोकेगी। मैंने अपने हस्बैंड से ये बात पूछी थी, शुरू हुई शादी के बाद जब मैं इनके साथ मामला पढ़ा, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं देखा था नमाज के मामले में। हाँ, मेरे नाना अबू, मेरे अपने बाप, यानी चंद बुजुर्ग खानदान में थे कि जिनके लिए हमारे अपने जहनों में होता है ना कि अब इन्होंने और क्या करना है, या जवानी में भी हमारे अपने वालिद को हम देखते थे तो वो नमाज का शौक रखते थे ऐसे। लेकिन मैंने इनकी उम्र में न्यूली मैरिड और यंग लड़का, और वो इस तरह भाग भाग मस्जिद में जाता है, मैंने नहीं कभी देखा था, सच्ची जो बात है। और ये सब पढ़ते हुए मुझे कई ख्याल आ रहा था कि घड़ी की सुइयां चलती नमाजों के साथ हैं, पहला अलार्म, दूसरा अलार्म, तीसरा, वहां जाकर आने में इतना टाइम है, नहीं नहीं हम नहीं जा सकते क्योंकि नमाज चली जाएगी। मुझे बड़ा अजीब लगता था कि अभी तो पढ़ी है नमाज जोहर की, तो हम जा रहे हैं, चलें उधर चलें, नहीं नहीं अभी नहीं जा सकते, नमाज का टाइम है, क्यों, वहां जाकर आने में इतना टाइम नहीं है कि असर, और असर क्या, जमात चली जाएगी। अजीब लगता था। बेस्ट टाइम जब मेरी शादी हुई तो मुझे ये कहते थे जहां जाना है आपने फजर से लेकर जोहर के बीच में, अब जहां कहेंगी मैं ले जाऊंगा, क्यों कि टाइम लंबा। मुझे बाद में समझ आई कि नमाज का टाइम बहुत है, और असल काम भी यही होता है उम्मत मुस्लिमा के काम का, बाद में तो बार बार नमाजें होती हैं। तो मैंने इनको पूछा था, क्या आप इस सोसाइटी में पले बढ़े जिस सोसाइटी में लोग समझते हैं कि लोग बिगड़ जाते हैं, तो आपको किस चीज़ ने रोका? तो कहते थे मेरी नमाज ने, स्कूल से भी, कॉलेज से भी, जॉब से भी, नमाज नहीं मैंने छोड़ी। और वो नमाज फिर आपको हया देती है। आज बता तो रही कि एक नेकी से दूसरी नेकी का रास्ता खुलता है। तो ये जिंदगी में खुद अपने बच्चों पे लगाएं। मैं कहती हूँ कि अगर आप अपने छोटे बच्चे, यंग लड़के खासतौर पे, आप तो लड़कियों का भी वही हिसाब है, पहले तो आप कहते थे लड़कों की इज्जत, लड़कों में हया, अब तो लड़कियों का भी सेम मामला, आप उनकी नमाज जिंदा करा दें। जिंदा नमाज जरूर बुराई से रोकेगी आपके बच्चे को। और अगर वो नमाज बस एक बेरू नमाज है तो ठीक है, पढ़ने तो दें। आप कहते हैं बच्चों को मार पीट के कह सुन के पढ़ाना पड़ता, करें तो सही, शुरू में हम सब भी ऐसे ही पढ़ते थे, लेकिन एक वक्त आएगा कि टेस्ट लग जाता है। तो फिर हम भी अल्लाह से अब ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला ऐसी सोसाइटी हमें भी दिखा कि जहाँ लोगों को नमाजों की फिक्र पड़ जाए। और सऊदी अरब जाकर आपको एक हद तक इसका एहसास तो होता है ना, ऐसे हैया अलैहिस्सलाम, क्या अभी तो अल्लाह अकबर होता है तो दुकानों के शटर गिरते हैं, गोल्ड की दुकानें खुली छोड़ के बंदे जाते हैं। ये सोसाइटी होनी चाहिए। मैं कहती हूँ ये नमूना अगर इसको और थोड़ी सी सलाह के साथ दुनिया के 4-6 मुसलमान मुल्कों में पेश कर दिया जाए, तो जैसे हम भाग भाग के वेस्ट में जाते हैं ना, आप देखिएगा वेस्टर्न लोग जो हैं वो हमारे मुसलमान मुल्कों में जाएं, जो सुकून, जो खुशी और जो वहाँ का इत्मीनान है। तो हर एक नेकी दूसरी नेकी के लिए लाती है। अब नमाज पे हमने काफ़ी बात कर ली, पीछे भी की, अभी भी हो गई, इसके बाद अब थोड़ी सी हम ज़कात की रुख पे बात करते हैं। जहन में ज़कात आती क्या आता है? हाय, देना पड़ेगा, बोझ, जिम्मेदारी, फिक्र, यानी ये उनके जुमले हैं जो वो देते हैं। और जो नहीं देना चाहते या नहीं देते वो क्या कहते होंगे, देखेंगे जी, कोई बात नहीं, वो तो पुराना सोना था, वो तो डोरियां भी थी, या मैंने लिया था ऐसे था, दिया था मैं तो इस्तेमाल भी नहीं कर रही, या वो तो मैंने बेटी के जहेज के लिए लेके रखा हुआ है, या वो तो मेरे हाथ में ही नहीं है, वो तो मेरे सास के पास है। यानी ना देने वालों को भी फिक्र ही है इस किस्म का, कि कोई रास्ता मिल जाए कि जिसमें ना दे, और जिनको देना है उनको भी फिक्र है। हालांकि ज़कात की असल क्या उसको हम देखते हैं, लेकिन पहले आप नसीम जी, आपने कुछ सवाल पूछना है या क्या?
जी, मैं पूछना था कि आपने ये बताया कि किसी का खून आ जाए तो हमारा जान भी चला जाता है, क्योंकि
देखिए, इन्होंने सवाल पूछा है कि माँ का फोन आ जाता है और तवज्जो बटती है, ये कह रहे हैं ना?
जी
पहली बात है, इसके बचने का बेहतरीन तरीका ये कि आप नमाज से पहले बेल बंद कर लें और फोन अपनी नजरों के सामने से हटा दें। आप उस दौरान अगर माँ का या शोहर का किसी का भी ऐसा फोन आता है तो आप तो माजूर है ना, आपको पता ही नहीं चला। जब आप देख लेते हैं ना, या आपको पता चल गया माँ का फोन है या शोहर का, फिर उठाना चाहिए, ठीक है? तो उसमें फर्ज नमाज, वो वाक्य है, इसमें बेसिकली आपको उससे काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है, जो जुरैज के नाम पे मारूफ है, कि जो इबादत करते थे और उनकी माँ बार बार उनके पास आ रही थी, लेकिन ये इबादत में मसरूफ होने की वजह से माँ को जवाब नहीं देते, माँ समझी कि ये जान के जवाब नहीं दे रहे, तो आखिरी दफा जाते जाते माँ बद्दुआ दे गई कि तुम्हें मौत ना आए जब तक कि तुम किसी फाहिशा का मुंह ना देख लो। बल्कि इसका जोर अगली बात से, ऊपर वाली बात से भी, इन सलाता तनहा वाली बात से। खैर, किस्सा मुख्तसर के एक दिन जुरैज इबादत कर रहे हैं अपनी कुटिया में, बाहर शोर हुआ, खोल के दरवाज़ा देखा तो एक औरत है, उसके हाथ में बच्चा है, और शहर के लोग या बस्ती के लोग उसके पीछे हैं, पूछ रहे हैं बताइए किसका बच्चा है, किसका बच्चा ये है वो है। तो वो औरत जूं ही जुरैज को देखती है तो कहती है ये इसका बच्चा है। अब बस्ती वाले बगैर सोचे समझे उस औरत को छोड़कर इनको मारना पीटना शुरू करते हैं कि अच्छा जी, बड़े नेक बनते हैं, हम तो आपको दरवेश समझते हैं, तो आपके ये काम है। जब इनकी कुटिया गिरा दी, ये कर दी, तो ये सच्चे थे, बच्चा इनका नहीं था। तो इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरी बेगुनाही साबित कर दे। वो जो छोटा सा बच्चा था माँ की गोद में, वो बोल उठा कि मैं जुरैज का नहीं, मैं इस गडरिए का बच्चा हूँ, शेफर्ड जो भी कुछ चरवाहा होगा। अब इतना बड़ा मोजज़ा देख लिया कि एक बच्चा गोद का बोल उठा, तो अब लोग शर्मिंदा हो गए, माफ़ियाँ मांगे, ये कर दें, हमें इजाज़त दें, हम आपकी सोने की कुटिया बना दें। कहा सोने की कुटिया नहीं, बस जैसी थी वैसी बना दो, तो असल में मामला तुम्हारा नहीं है, मेरा क्या? कहा मुझे मेरी माँ की बद्दुआ लगी है, मेरी माँ ने बद्दुआ दी थी कि तुम्हें मौत ना आए जब तक फाहिशा औरत का मुंह ना देखो। और किसी का कमेंट में अक्सर ये सुनाकर आगे दे देती हूँ, वो किसी की स्पीच में सुना था कि आज भी जो लोग दिन रात फाहिश औरतों के मुंह देखते हैं किसी भी रंग में, तो वो माओ की बद्दुआएं लगी हुई हैं उनको, वरना नहीं लगती। अब आप देखिए कि इस वाक्य को सामने रखे, तो माँ आई तो वो नफिल पढ़ रहे थे, तो आज शरीयत में इसका हुक्म क्या कि नफिल आप नमाज भी तोड़ सकते हैं, लेकिन अकलमंदी यह है कि आप असबाब ही अपने वो रखें कि जिसमें आपको नमाज तोड़ने का मौका ना मिले, ठीक है? और आप ज्यादा ये कह सकते हैं, अगर बहुत ही मुख्तात हैं, नमाज शुरू करने से पहले माँ को फोन कर दें या मैसेज कर दें कि मैं अब नमाज पढ़ने लगी हूँ, तो आधा घंटा तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ। यही चीज़ आप शौहर को भी कह सकते हैं, तो फिर वही बात है, फत्तकुल्लाह मस्तता, तो ठीक है इंशाल्लाह। चलिए आइए देखते हैं कि ज़कात क्या है। फरमाया, सदक़तुन तुख़ज़ु मिन अग्नियाइहिम व तरुद्दु इला फ़ुक़राइहिम। ये कैसा सदका है जो हमने तुम पर फ़र्ज़ कर दिया, ये अमीर लोगों से लिया जाता और गरीबों को लौटा दिया जाता है। यहाँ लफ्ज़ लौटाने पर बड़ा ज़ोर है, तरुद्दु इला फ़ुक़राइहिम यानी अमीर लोगों ने कोई चालबाजी करके, कोई गड़बड़ करके गरीबों का माल अपनी जेबों में रखा हुआ है, इसे वापस कर दो, ये ज़कात है जो इनका हक है। फरमाया, हक़ुल लिस्साइली वल महरूम, ये एक मुकर्रर करदा हक है साइल यानी सवाल करने वाले के लिए, और महरूम के लिए यानी जो सवाल नहीं करता। सूरह ज़ारियात आयत 19 है। साइल वो है जो अपनी ज़रूरत बयान कर दे, और महरूम वो है जो अपनी ज़रूरत बयान ना करे। वाज़े? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक हदीस कुदसी बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने ज़कात सोच समझ कर मुकर्रर की है, अब भी अगर तुम में से कोई शख्स भूखा नंगा रह जाता है तो सिर्फ इसलिए कि ज़कात पूरी अदा नहीं हो रही। यानी अगर सब माल वाले अपने माल की ज़कात दें और ठीक बांटें, तो दुनिया में कोई शख्स भूखा नंगा ना रहे। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अल्लाह ताला ने सबका रिस्क मुकर्रर किया है। आप सब बचपन से ये बात सुनते आए ना कि अल्लाह ताला कभी किसी को भूखा नहीं रखता, लेकिन दुनिया में देखें तो कुछ लोगों के पास तो बहुत है और कुछ के पास एक वक्की रोटी भी नहीं है। तो ये तजाद क्या है? तजाद नहीं है, ये सिर्फ हमारी समझ की कमी है। आप इसको यूं समझिए कि जैसे यहाँ खजूरें रखी जाएं और आपको गिन कर जितने आप लोग हैं उतनी खजूरें एक थाल में रखी जाएं और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि आप सब एक एक खजूर ले लें, तो सबको मिल गई। ठीक है, हो सकता है किसी ने ना समझी में दो पकड़ ली, दूसरे बंदे ने तीन पकड़ ली, तो पांच लोग इस रूम में खजूरों के बगैर रह जाएंगे। अब क्या होगा? अब उन पांच को मिलनी है कैसे? जिसके पास दो एक्स्ट्रा थी वो दो को दे दे, जिसके पास तीन एक्स्ट्रा थी वो तीन को दे दे, बात पूरी हो जाएगी। अल्लाह ने सबका रिस्क रखा हुआ है। किया क्या? टेस्ट के लिए। सूरह यासीन में यह आयत आती है कि हम उनको क्यों दे जिनको अल्लाह चाहता तो खिला लेता। तो वहां इस पे बात अक्सर हो जाती है क्या, कि अल्लाह ने बनाया सबके लिए रिस्क, तैयार किया, रोटियां सबकी पकाई, बस किया क्या कि फरिश्तों से कहा फरा को तीन दे दो, फायजा को छह दे दो, सोबिया को चार दे दो, और आप में से दो तीन के नाम लेके कहा इनको कोई नहीं देनी। अब क्या हुआ? फरा को खुद देखना चाहिए, फायजा को खुद देखना चाहिए, सोबिया को खुद देखना चाहिए कि मेरे पास तो एक्स्ट्रा भी हैं, तो मेरे इर्द गिर्द कौन है जिनके पास नहीं। और यकीन करें यही फलसफा इस्लाम में सदके खैरात का। मैं और आप अगर हम में से हर एक अपने करीबी, अलक्रब मिन अलक्रब, करीबी से करीबी, यानी आप अपने घर से शुरू करें, फिर गली से, मोहल्ले से, खानदान है, बिरादरी है, अगर हम में से हर एक अपने अपने गरीब रिश्तेदारों की टेक केयर कर ले तो मामला ख़त्म। गवर्नमेंट को तो कुछ करना भी नहीं पड़ता। जैसे नबी सल्लम ने मदीना आकर अखवाते मदीना करवाई थी ना, जिस तरह भाई भाई बना दिया, किस तरह मुहाजरीन अकामोडेट हो गए मदीना जैसी गरीब बस्ती में। कोई बहुत ज्यादा अमीर बस्ती नहीं थी मदीना की, बस किया क्या, ब्रेक डाउन कर दिया। आप सब एक एक को तो खिला ही सकते हैं ना, तो आप एक एक को घर ले जाए, खत्म हो गया। और अगर यहाँ मिसाल है कि हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ 50 लोग अचानक आ जाए कैंटीन के लिए, और आपने 50 का तो अरेंज एक्स्ट्रा नहीं किया होगा, तो मसला होगा ना। अब क्या होगा कि आप 50 लोगों के लिए एकदम खाना अरेंज करें, ये मुश्किल है। तो आप सबसे कहा जाए कि इनमें से हर एक को आप अपने साथ बिठा लें और अपनी प्लेट इनके साथ शेयर कर दें, तो मसला हल हो गया। ये हल है इस्लाम का। तो सदका सिद्क से है, ये इसके लफ्ज़ पे भी गौर कर लें, सच्चाई, टू बी सिंसियर, आई एम वेल विशर। जब सोसाइटी में हमदर्दी होती है तो सदके देने आसान होते हैं। तो अमीर गरीब का फर्क नहीं है, फर्क यह है कि आप अपना हक उनको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। कुछ लोग मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते, क्या करें, ढूंढें जो नहीं मांगते बल्कि उनको ज्यादा देकर आए, क्योंकि वो सफेद पोश हैं। अल्लाह ताला कहते हैं उनके चेहरों से पहचानो, उनके रंग पीले हैं। वो बेचारे पाँव खोलते हैं तो सर छुपता है, सर छुपाते हैं तो पाँव खुल जाते हैं। तो लिहाजा अब आप बताइए कि दिल में अगर ये फीलिंग हो कि हाय फलां ने तो कुछ खाया ही नहीं, हाय फलां के पास तो सर्दी के कपड़े भी नहीं हैं, उनके पास तो जूते भी नहीं हैं, हमारे पास 10 से 10 जूते पड़े हुए हैं, तो क्या हमारी सोसाइटी से भूख और गुर्बत कम हो सकती है? बिल्कुल ख़त्म हो गई। और ये प्रैक्टिकली हुआ, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का दौरे खिलाफत आप कह सकते हैं कि अमली इस्लाम का सबसे बेहतरीन नमूना था। इससे पिछले दौर में अभी चीज़ें चल रही थी, अबू बकर सिद्दीक के दौर में फितने और थे, और नबी सल्लम के दौर में कह सकते हैं कि शरीयत साजी अभी हो रही थी, हालात भी थे। उमर का दौर वो दौर है आइडियल, जो आज भी रेप्लीकेट किया जाए, जिसको आज मॉडल बनाकर दुनिया में पेश किया जाए, 1-2 साल दे दें पूरी दुनिया से गुर्बत, अफलास और पॉवर्टी और जो कहत साली, इनका खात्मा हो सकता है। ये बड़ी बड़ी हुकूमतों को भी पता है, सिर्फ मेथडोलॉजीज वो यूज़ करें। कि लोग ज़कात लेकर फिरते थे कि दें किसको, सदका लेकर फिरते थे कि दें किसको, आज भी ये हो सकता है। आप कहते हैं अच्छा जी फिर अब तो ये बहुत दूर की बात है, कब होगा, उमर जैसा कोई खलीफा आएगा? नहीं, आप अपने घर से शुरू कर दें, आप अपने खानदान में देख लीजिए। जो हमें एक्स्ट्रा मिलता है ना, वो असल में किसी और का होता है, अल्लाह ताला ने कहा होता है बांट दो। हम बांटते हैं कि वजह उसको संभालते हैं, फिर इसीलिए बीमार रहते हैं, सोचे परेशानी की, ये है वो है। तो जब आप अपनी बेसिक्स पे रहें। अच्छा, एक छोटी सी बात, चूंकि माली मामले, और मेरी ख्वाहिश है कि सीरीज में मैं सब कुछ बोल दूँ, ताकि कोई इसको ही सुन ले तो उसको बहुत सारी बातें मिल जाए। हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास कल तक सैकड़ों की कमाई थी, फिर हजारों में बदल गई, अब लाखों में आ गई, और अब माशाल्लाह करोड़ों में मियाँ को नफा होने लग गया। अमूमन लोग क्या करते हैं, अपनी ख्वाहिशें बढ़ा लेते हैं, अपनी चॉइस अच्छी कर लेते हैं, सस्ती चीज़ें लेना छोड़कर महंगी लेना शुरू हो जाते हैं, इसराफ शुरू कर देते हैं, एक्स्ट्रा लेना शुरू कर देते हैं, ज़ाया करना शुरू कर देते हैं। तो आप तो फिर वहीं खड़े हैं। मैंने लोगों को करोड़पति होते हुए भी बाज़ दफ़ा दूसरों से उधार लेते देखा है कि ज़रा 20,000 देना महीने का खर्चा चलाना है। भाई आपके करोड़ों है, कहते वो सारे इन्वेस्ट कर दिए, वो सारा उधर फंसा हुआ है, या वो इस वक्त जेब में कुछ नहीं है। आप तो वहीं खड़े हैं, चंद सौ में भी आपकी यही कैफियत थी, करोड़ों में भी यही है। इस्लाम क्या कहता है? आप सब अपने लिए इस चीज़ को मेयार बनाए। देखिए, मनी मैनेजमेंट इज़ द हाफ ऑफ दीन मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारे आधे फिक्र मनी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। आप अपनी एक लिमिट बनाएं, अपने आप को देखें, मेरी औकात क्या, बाय द वे कितनी को मैं अच्छी हूँ और मैं कितनी को और अच्छी लग सकती हूँ। अल्लाह के यहाँ मेरा क्या मुकाम है, फरिश्तों की नज़र में क्या हूँ। दूसरे नेक लोगों से तकाबुल करें कि मेरी औकात क्या है। फिर दूसरा सवाल खुद से कहें, इस जैसे जिस्म पर या इस जैसी औकात वाले इंसान पर ज़्यादा से ज़्यादा महीने का कितना लगाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? बात पैसे की नहीं है। आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप 50,000 रुपये का एक जोड़ा खरीदें और एक शादी में जाकर पहन के आ जाएं। आप कर सकते हैं अफोर्ड, क्या फर्क पड़ेगा, जब है तो कर ले। बट आप कहेंगे कि मेरी औकात नहीं है कि मैं 50,000 का पहनूं। आई कैंट अफोर्ड बाय माई सेल्फ। कैसे मेरे जैसा बंदा 50,000 रुपये का जोड़ा पहनकर एक महफिल में जाए? सॉरी, आई कैंट। आप कहते नहीं, मैं अपने ऊपर ये नहीं लगा सकती, आई कैंट, मैं नहीं करूंगी। अच्छा भाई, फिर क्या करें? कितनी है आपकी औकात? बेस्ट बांट क्या है? बेस्ट, दी बेस्ट बांट वही है जो एक हदीस आपने सुनी होगी पहले से कहीं, कि खुश्क साली थी, बारिश नहीं हो रही, तो बारिश नहीं है तो फसल नहीं है। एक शख्स कहीं जा रहा था तो उसने दूर से बादलों में आवाज सुनी, इसकी फलानन, फलां के खेत पर जाके बरसो। उसको हैरत हुई, उसने देखा कि वो बदली वहां से उड़ रही थी, उड़ती गई, चलती गई, उसके बाद एक खास जगह बरसी, वो सारा पानी जमा हो रहा था एक नाले में और वो नाला ट्यूबवेल बनकर किसी एक शख्स के खेत पे जाके गया। सारे इर्द गिर्द खुश्क हैं लेकिन उस एक के खेत को पानी कुदरती तौर पे बारिश का जा रहा है। कहने लगा कि अच्छा, इसके साथ ऐसा मामला क्यों है, मैं देखता हूँ ये है कौन। थोड़ी देर हुई तो वो आ गया शख्स, कहा तुम्हारा नाम क्या? माँ इस्मो का। उसने वही नाम बताया जो बादलों में सुना था। कहने लगा, मैंने तो अभी तुम्हारा नाम बादलों में सुना है। अच्छा, सुना होगा, ये बताओ कि तुम्हारा अमल क्या है, सबकी खुशहाली और तुम्हारे खेत में पानी आ रहा है। कहने लगा, वैसे तो मुझे कोई अपनी इतनी नेकी नहीं याद, बट एक पता है मुझे कि मैं इस खेत की जो फसल है ना, उसको 3 हिस्सों में बांटता हूँ। जब साल में एक या दो बार फसल आती है, 3 हिस्से कैसे करता हूँ? एक हिस्सा मैं अपने बीवी बच्चों घर जरूरियात पे लगाता हूँ, जो मेरा फर्ज है। दूसरा हिस्सा मैं अल्लाह के रास्ते में डिवोट कर देता हूँ, गरीब रिश्तेदारों को, मिसकीनों को, सदका ज़कात खैरात जो भी देना है। और जो आखिरी तीसरा हिस्सा है ना, वो मैं बचा लेता हूँ अगले साल के बीज के तौर पे, यानी वो मेरी सेविंग्स है। ये शख्स कहने लगा, बस तेरी ये बांट अल्लाह को पसंद आ गई है। यकीन करें, ये अगर आपने पल्लू से बांध ली ना बात, आप कभी आपे से बाहर नहीं होंगे। मैं लोगों की ज़रूरतें, उनकी चीज़ें, उनके कपड़े, जूतियाँ और उनकी कीमतें जो मुझे बताई जाती हैं, मैं सोचती हूँ इस अलमारी में कई लाखों के, अब तो करोड़ों का सामान होगा। आप एक शादी में बनने वाले कपड़ों की मालियत सिर्फ 20 जोड़े कोई बनाता है ना एक शादी में अपनी बेटी के या बहू के, सीधा सीधा कड़ा कड़ा हिसाब करके देख लें, लाखों में वो 20 जोड़े बनते हैं। आपको भी अंदाजा होगा, आप उसको 10, 12, 20, 25 तोले सोना डाल दें, वो करोड़ों में है। आपकी औकात है कि नहीं, कदर है कि नहीं, नमाज है कि नहीं, ये कपड़े पहन के नमाज पढ़नी है कि नहीं, और कपड़े भी वो हैं कि जिसको पहन कर छुपे भी कुछ ना, तो ये ज्यादती है, ये नहीं करनी।